Option 3. Okay, 31st December 93. नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी पर व्यर्थ को समाप्त करना। नव जीवन दे उड़ती कला में उड़ने वाले नवयुग के रचयिता शिव बाबा अपने आधार मूर्त बच्चों प्रति आज नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्म की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माएं ही की नई जीवन है, नई जीवन में आ गए ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया, स्मृति नहीं, वृत्ति नहीं, दृष्टि नहीं, सब बदल गया। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं और नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए, इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नई सृष्टि का जो रचयिता है बाप दादा, वो अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ अब सभी बच्चे सहयोगी है। किसमें सहयोगी है? नई सृष्टि बनाने में सहयोगी है। आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से वो दिन का संगम है तुम्हारा, तुम बेहद के संगम युग पर हो। तो एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नवयुग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हैं। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन में आगे होना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेला से देखो क्या क्या नया है। अमृत वेला अमृत वेले उठते ही कौन सी स्मृति है? बाप ने उठाया विश्व कल्याण के लिए हम उठे हैं। अमृत वेले जिनका जन्म है वो भाग्यशाली है जो वरदान में बोला है। तो अमृत वेले ही नई रीत नई प्रीत, उठते ही नया संकल्प, उठते ही बाप से मिलन, उठते ही अमृत मिले में नया क्या क्या है या क्या क्या करना है? नए योग के प्रयोग, नए अनुभूति, नई अनुभूतियां, नए संबंध। जो संबंध है उसमें नवीनता लाना, सर्व संबंधों की नई अनुभूतियां, बीज रूप स्थिति की नई अनुभूतियां, ज्वालामुखी योग की नई अनुभूतियां, फरिश्ते रूप की नई अनुभूति है, आज शरीर बनने की नई नई तरकीब, नए नए तरीके, इस देह से स्वयं को डिटैच करने की नई नई युक्ति है, विश्व कल्याण की नई नई प्लानिंग, सब कुछ नया। हर अमृत वेला हमको शक्ति से भर दे, क्योंकि दिन की शुरुआत है, तो अमृत वेला सब कुछ नया, संकल्प नए, सोच नई, कल्पना नई, विजुअलाइजेशन नई, सब कुछ नया, नए नए प्राप्तियां होगी, नए नए आनंद होंगे, नए नए खुशी, नए नए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, नए नए प्लानिंग, नए नए जो संकल्प है या प्रतिज्ञा है, नई प्रतिज्ञा है, तो सब कुछ नया अमृत वेला। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से देखो तो नई रीत और नई प्रीत, नई रीति से प्रीत, नई प्रीत, प्रीत भी नहीं, पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन की ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है, वो दिनचर्या और ये दिनचर्या, उठते ही अमृत वेले अनुभव, ज्ञान भी नया, मूल्य में क्या नवीनता लानी, ज्ञान में बाबा ने कहा ये ज्ञान डिफरेंट है आज का, ज्ञान सागर बाप ही जाने क्या नवीनता लाएंगे, मुरली सुनने में नवीनता, धारण करने में नवीनता, समाने में नवीनता, मंथन की नवीनता, सुनाने में नवीनता, वही वही रीति से नहीं सुनाना है, उसके नई दृष्टिकोण से उसे देखना है, मुरली सुनते समय, सुनाते समय स्वरूप बन जाना, उसका स्वरूप बनना, समझाने में, सुनने में नवीनता, कैसे सुनना है, अब तक कानों से सुन रहे थे, अभी अभी दिल से सुनो, कान से सुनना बंद, आंखों से सुनो, तो जो सुन रहे हैं उसको स्वयं में समाना है, जो सुन रहे हैं केवल सुनना नहीं है, सुनना तो भक्ति मार्ग में भी होता है, कनरस है वो, केवल सुनना,
स्वरूप बनना,
सुनना उसका स्वरूप बनना, उसको अपने अंदर में समय देना, थोड़ा वो अंदर जाए, धीरे धीरे एक एक पॉइंट, एक एक लाइन जो वो कह रहा है उसको समझना, वो क्या कह रहा है, क्या भाव है, उस भाषा को भी समझना, वो किस भाषा में, जो भाषा में वो बोल रहा है, वो भाषा का भी हमको अच्छा ज्ञान चाहिए। आज बाबा ने कहा हिंदी और इंग्लिश दो इम्पोर्टेंट है, आज बोला तो भाषा इम्पोर्टेंट, तो जो भाषा में वो बोल रहा है उस भाषा का भी ज्ञान, जिस भाव से वो बोल रहा है उस भाव को भी समझना है कि वो क्यों बोल रहा है ऐसा, तो ज्ञान में भी नवीनता है। दिनचर्या, बाबा यहां दिनचर्या की बात कर रहे, जो दिनचर्या है उसमें हम क्या परिवर्तन करें कि जिससे स्थिति और योगयुक्त तो हो सके, ऐसी कौन सी बातें हैं दिनचर्या में जो स्थिति को योगयुक्त तो नहीं होने देती, ऐसे वो कौन से संस्कार है कि जो दिनचर्या को, हमें दिनचर्या में स्थिर नहीं रहने देते,
तो पुराने दिन की बातें आज अगर हम ला रहे तो नवीनता तो
हो ही नहीं सकती, पुरानी या सब कुछ नया, सब कुछ नया, मर जीवा जन्म, शरीर भी नया, बाबा ने तो कल की मुरली में तो यहां तक कहा ये जो पुराना शरीर है इसमें बाबा नई शक्ति भरते हैं, नई शक्ति भरती है, शरीर भी तुम्हारा नहीं, उसको भी मेरा कहना, ये शरीर की जिम्मेवारी भी तुम्हारी नहीं है, बाप की जिम्मेवारी, यहां तक कहा
वो
चला रहा है, तो सब कुछ नया की अनुभूति, नवीनता, नॉवेल्टी, ये ज्ञान, न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड, ये ज्ञान नया नॉलेज है नई दुनिया के लिए, ये पुराना नॉलेज नहीं है, इट्स अ न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड, तो न्यू नॉलेज से हमारा जीवन भी न्यू हो जाए, ब्रांड न्यू, सब कुछ नया हो जाए उसमें, तो जो कुछ पुराना है उस पुराने से लगाव बहुत,
नया जन्म, डेली नया जन्म हो,
नया जन्म हर दिन द्विज है ना,
जो डेली एक ही जगह पर बैठता है उसमें मोह हो जाता उसी से आपको
मोह तो कहीं पर भी हो सकता है, मोह तो पेन में भी हो सकता है, मैं मोह तो जो बेड है उसमें भी मोह होता है, हर चीज में मोह का कोई हिसाब नहीं। बात मन की है, मन कहीं आसक्त ना, उसकी चेकिंग करते रहो, हर दिन मुरलियों में आता है, चेकिंग करो चेकिंग करो चेकिंग करो चेकिंग करो, हर दिन आता है, ऐसा कोई भी मुरली नहीं जिसमें बाबा नहीं कह रहे कि देखो। तो दिनचर्या में देखना ऐसी कौन सी बातें हैं जो हिलाती है, अचल अडोल निर्भय, आज बोला है योग युक्त जो सर्विसेबल बच्चे है वो निर्भय है, अचल अडोल है। तो सब नया हो गया, स्मृति नहीं, स्मृति अर्थात मेमोरी रिमेम्बरेंस, जो जो नई बातें हमको याद रखनी है, पुरानी अब भूलनी, वृत्ति नहीं, हमारी जो वृत्ति हो संकल्प से जो वृत्ति बन रही हो नहीं, दृष्टि नई दृष्टि, ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है कल की मुरली से दृष्टि के बारे में, तुम्हारी दृष्टि एक बाप की तरफ रहे बस, यह है सबसे ऊंचा पुरुषार्थ, तुम्हारी दृष्टि एक बाप की तरफ रहे, कुदृष्टि ना हो शुद्ध दृष्टि हो। हाँ, वो तो आने में देना है मतलब, तो कुदृष्टि का हो शुद्ध दृष्टि हो, और तुम्हारी दृष्टि एक बाप की तरफ हो, ये है सबसे ऊंचा पुरुषार्थ। जैसे वो जगदीश भाई कहते हैं ना, वो जो झाड़ू मारने होते हैं ना रास्ते पे, झाड़ू मारते ना बड़ा लंबा वो डंडा होता है, वो एक ही तरफ देखते रहते, ऐसी बात इधर देखते ही नहीं, तो तुम्हें भी बस एक बाप की तरफ देखना है, इधर देखना ही नहीं है, वो ऐसे ऐसे झाड़ू मारते ऐसे ऐसे करते बस, इधर देखते हैं क्या?
नहीं देखते,
नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते, तो तुम्हें भी इस दुनिया की तरफ देखना ही नहीं है, नया है कुछ तो बात।
तुमको एक प्रशिक्षण बताइए,
उनको ही पूछना पड़ेगा। तो तुम्हारी दृष्टि नई हो जाए, जो दृष्टि अब तक देह को देखती थी वो आत्मा को देखने लगे,
नजरिया,
तुम्हारा नजरिया आउटलुक दृष्टिकोण एटीट्यूड बदलना है, सब बदल गया है ना, और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है, वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है, पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं और नई चीज देना चाहते हैं। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार है, ये ब्राह्मण संसार भी नया, तो अमृत वेला नया, मुरली नई, वरदान नया, स्लोगन नया, महावाक्य नए, प्रश्न नए, नई नई परिस्थितियां, नई नई परिस्थितियां में नया नया उत्साह उमंग और साहस, दिनचर्या भी नया, नई
हैबिट्स हमारी,
नई नई आदतें,
आदतें को नए तरीके से रिस्पॉन्ड करना नहीं पड़ती,
तो हर चीज नया, पर इसका अनुभव हो नवीनता का, तो संसार भी नया और संस्कार, संस्कार मतलब वही हैबिट्स उसमें आ जाएगा, संस्कार नए संस्कार, तो नए संस्कार बनाने पड़ेंगे कुछ कुछ, पुराने संस्कार को नष्ट करना पड़ेगा, नया स्थापना और पालना और विनाश, बाबा ने कहा ये तीन कर्तव्य है हमारे ब्राह्मणों के, विनाश किसका, पुराने संस्कार, स्थापना किसकी, नए संस्कारों की, दैवी संस्कारों की, और फिर उनकी पालना करना, नई आदतें डालना, नई आदतें डालनी है फिर तुमको, कौन सी ऐसी आदतें है जो अच्छी आदतें है वो ढूंढनी है, कौन सी ऐसे संस्कार है जो हमको लगते इनमें है पर हमने नहीं है, दूसरों को देखना है, बाबा ने कहा ना जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है या जो ज्ञान की धारणा जिनमें अच्छी है उनके प्रति रिगार्ड हो, और उनसे सीखना भी है कि इनमें ऐसी कौन सी धारणा है जो हम में नहीं है, कैसा कौन सा वो संस्कार है, चाहे वो चलने का ही हो, बाबा कहते थे मम्मा ऐसी चलती है इस धरती को भी मम्मा से प्यार है, इतना वो धीरे परिश्रम की चाल कि धरती भी उससे प्यार करती है,
चप्पल छटपट छटपट करते
सब कुछ हो उसमें, तो ये जो छोटी छोटी बातें बहुत ही सूक्ष्म, चल कैसे रहे, बैठ कैसे रहे, कोई यहाँ बैठा है योग में हम आए थम, वो भी बैठ कैसे रहे, हम चल कैसे रहे, हम उठ कैसे रहे,
खा कैसे रहे,
खा कैसे रहे। हमें बहुत बार ये पता नहीं रहता है कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है। मैं मेरा ही अगर उदाहरण दूं तो मुझे एक बार मुझे पता ही नहीं था, हमारे जो मेरी गाड़ी जो रहती है वो नीचे रहती है, वहां वो लोग रहते हैं दूसरे डॉक्टर सुधीर और सौरभ भी। तो मैं जब सुबह अमृत वेला आता हूँ तो गाड़ी की चालू करने की जो आवाज है, मैंने कभी सोचा नहीं, शायद उन्होंने कभी बोला भी नहीं, ना ही मैंने कभी सोचा, पर मुझे किसी और ने बताया कि शायद वो आवाज से वो लोग को की नींद खुल जाती होगी उस समय, वो तो सोते हैं ना अमृत वेले तो तुम जाते हो तो ये बात तो मैंने कितने समय तक सोची ही नहीं, कितने सालों तक। फिर जब पता चला तो मैंने सोचा भी यहाँ नहीं, उसको बाहर निकालो फिर चालू करो तो हमारे अमृत वेला तो हम कर रहे तो, पर उनके वजह से हमारे वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, वो तो सो रहे हैं ना, उनको सोने दो,
उसका अमृत वेला खराब हो रहा
वो कौन है, वो ज्ञानी थोड़ी है, वो वाली बात है,
लेकिन बोला नहीं कभी,
नहीं 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 बोला कभी नहीं बोला।
तो
हाँ मतलब वही, हम पुरुषार्थ तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं परंतु हमारे पुरुषार्थ की वजह से कोई दुखी है, अभी क्या करें कि उसमें भी हमें थोड़ा देखना है, कोई दुखी तो नहीं है हमारी जो दिनचर्या है उस वजह से। हम चल तो रहे हैं पर वो चलना भी ऐसा है कि किसी का योग ही डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म से हम की चेकिंग करते जाए तो संसार भी नया और संस्कार भी नए, नए संस्कार सीखना है दूसरों से, हर एक से सीखना है।
एक भाई दिल्ली दूसरा भाई का जो आधा लाने बंद कर दिया तो उसने पैसों ने उसके खटिया के नीचे डाल दिया, उसको भी जाके हम भी जाके मेरे भी जाके
वो खटिया के नीचे डालने से कुछ नहीं होता है, कुछ वही वही घुस के वही बंद। वो एक भाई है जिसको बताया था ना किसने, सूरज भाई ने शायद, कि रोज अलार्म लगा के सोता था तो जैसे अलार्म बजता था 3:30 बजे बंद कर देता, तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि सामने जो बेड है उसके नीचे रखता हूँ ताकि उठू फिर घुसू नीचे और बंद करू टूट जाऊंगा ना, तो उठा फिर घुसा और बंद किया और वही सो गया जमीन पर। अलार्म नहीं उठाता है किसको, परमात्मा प्रेम ही अलार्म है ये सूल साधन है, वो आज है कल नहीं है, वो धोखा भी दे सकते हैं कभी बंद हो गया तो। हम कितने साल हो गए योगी जीवन में, अगर अभी तक भी हमारा जो आधार है साधन है अगर वो न बजे तो हम न उठे तो क्या इसको योगी जीवन कहेंगे? आधार लेना अच्छी बात है परंतु वो फेल भी हो सकता है, साइंस अपूर्ण है कहा बाबा ने, ग्रुप वन साइंस अपूर्ण है। तो इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं तो तुम अपनी नवीनता को धूमधाम से मना, हर चीज में नवीनता, दिनचर्या नहीं, सोच नहीं, दृष्टि नहीं, स्वप्न नहीं, नुमा शाम का योग नया, घूमने जाते वो घूमना नया, वो चलना नया, वो देखना नया, वो सुनना नया, सब कुछ नया 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 नया। अगर अभी तक भी वो पुरानी बातें हैं तो उसको बदलनी, पर उसके लिए चेकिंग भी उतनी हमारी सूक्ष्म हो जाए। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना, उत्साह होता है इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्सव क्यों कहते हैं, पर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्साह है, उत्साह से ही एक दो को बधाइया व मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्साह है, उत्सव है हर दिन, ऐसा लगता है कि दुख लगता है पता नहीं आज क्या परिस्थिति आ जाए, दुख तो नहीं लगता। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है, सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। उमंग उत्साह क्या कहा है बाबा ने ब्राह्मणों के? श्वास, श्वास, एंथुसियाज्म, हर चीज, हर कार्य, हर सेवा कैसे करे? उमंग उत्साह से। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हैं। आज मनाने के लिए इकट्ठा हुए हो ना, लेकिन आपका नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा है ही। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थानों पर जाओगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, हर घड़ी, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते करते कई बार कई पुरुषार्थियों का उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, फिर कुछ और पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं होती। क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है कि जिसमें उमंग उत्साह ही खत्म हो जाता है? ना तो अमृत वेले उठने की इच्छा होती, उठ भी गए तो कोई दिव्य अनुभव नहीं होते। मुरली सुन रहे हैं क्योंकि सुनना है, सेवा कर रहे हैं क्योंकि करना है, परंतु वो जो उमंग उत्साह, वो जो फोर्स जो पहले था जब नए नए ज्ञान में आए थे, वो अब नहीं रहा। ऐसे क्यों हो जाता है? मर्यादाओं का एक पूरी अव्यक्त वाणी इसके ऊपर है, क्यों ऐसे होता है? कई सारे कारण बाबा ने उसमें बताया। परदर्शन, दूसरों को देखने लग जाना, ज्ञान का चिंतन कम हो जाता है, ज्ञान की जो पकड़ है वो कम हो जाती। तो जहां ज्ञान कम हो गया वहां योग भी कम हो जाता है, और फिर परदर्शन और पर चिंतन ही रह जाता है, जिसमें आत्मा उमंग उत्साह निर्बल हो जाती है, बलहीन। पंख टूट जाते हैं ना, तोड़ेगी कैसे? पंख ही टूट जाते हैं, उमंग उत्साह ही पंख है उसके। तो इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो, तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ है। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़े शक्ति है, पावर है। पंख भी है और शक्ति भी है। नीरस जीवन नहीं, दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करे, रस नहीं, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है, कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देती है। एक तो पंख है, शक्ति है, और मुश्किल को सहज कर देती है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देती है। पर गिफ्ट, तोहफा अर्थात गिफ्ट, क्या गिफ्ट देती है? परिस्थितियां आगे बढ़ा देती है, अनुभव भी बना देती है, और क्या, बहुत कुछ सिखा देती है, पाठ पढ़ा देती है, क्लास आगे बढ़ जाती है। गुड लक है परिस्थितियां, शक्तिशाली बना देती, जो पहले हम नहीं थे अब बन गए। परिस्थिति आने के बाद हम, और उसको पार करने के बाद हम वो नहीं रहते जो पहले थे। कुछ तो ऐसी सीख दे जाती है जो हमने मुरलियों में सुनी तो थी बातें, पर कभी अनुभव में नहीं आई थी। वो परिस्थिति आने के बाद ही पता चला कि ये बात ऐसी है। तो परिस्थिति आए तो वाह वाह करो बाबा ने कहा,
खजाने को बाहर लाने का,
बाहर लाती है, निखारती है उसको, व्यक्तित्व को निखारती है। एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी कहा जाता है। जितनी ज्यादा परिस्थिति, और उसमें हमारे अंदर की जो क्षमता है वो हमको पता चलती है कि हम ये भी कर सकते हैं। दादी जानकी का एक उदाहरण है, किसी एयरपोर्ट पे थे तो मोहिनीबेन ने बताया, न्यूयॉर्क के मोहिनीबेन, शायद न्यूयॉर्क के वहां, तो वहां पर व्हीलचेयर नहीं थी एयरपोर्ट पर, और बहुत लंबा डिस्टेंस था जो कि चलना था। वो जो फ्लाइट जहां आने वाली थी बहुत लंबा डिस्टेंस था, तो कहा कि व्हीलचेयर है नहीं तो चलो पैदल। दादी ने कहा ठीक है, अभी क्या, इतनी हालत ठीक नहीं थी। तो दादी चलती गई चलती गई चलती गई और पहुंच गई, और पहुंचने के बाद बोलती, ये तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं भी इतना चल सकती हूँ। तो बोला मुझे भी वंडर लग रहा है, मैं कैसे चली। तो चाहे कोई भी आत्मा हो, परंतु परिस्थिति आने के बाद हमें जो शक्ति है वो बाहर आ जाती है, हम जो नहीं कर सकते वो कर दिखाते हैं, तो आनी चाहिए, जरूरी है बहुत, पक्का बनाने के लिए। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, गिफ्ट हो जाती है वो हमारे लिए, वो गिफ्ट ऐसी गिफ्ट हो जाती है कि हमेशा के लिए हमारे साथ रहे, जो किसी ने नहीं सिखाया आज तक उस परिस्थिति सिखा कर गई। पहाड़ को भी राई नहीं रुई बना देती। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है, इसलिए वो उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधारभूत नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो, अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो, क्या कहेंगे, जानते भी है मानते भी है और उसी में चलते भी है, सदा यह उत्साह रहता है कि कल्प पहले हम ही थे, हम ही हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे, तो अविनाशी उत्साह हो गया ना, है और सदा होंगे, तीनों कालों का हो गया ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल हो गए ना, तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा है, नंबर वार है या सब नंबर वन है, जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर नंबर वन होंगे ना, नंबर वन थोड़े होंगे, कितना विश्वास है उसे, देखो कितना पॉजिटिव है कि सभी नंबर वन नहीं है, नंबर वन है कौन सी आत्मा है, निश्चय बुद्धि, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा है। तो उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है, उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन की उड़ती कला के पंख है, उमंग उत्साह है तो शक्ति मिलेगी, उमंग उत्साह है तो तूफान तोपा पहाड़ राय नहीं रुई बन जाएगा, उमंग उत्साह है तो सहयोग मिलेगा, परिस्थिति मनोरंजन का साधन बन जाएगी, एंजॉय करेंगे उसे, दुख नहीं देगी उसे, दुआएं मिलेगी, उमंग उत्साह से सेवा में खुशी रहेगी, आनंद रहेगी, स्थिति उपराम रहेगी, हल्कापन रहेगा। और यहाँ लास्ट में क्या कहा कि जब है ही निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि की निशानियां सुनाई थी बाबा ने कल, पांच छह, कौन सी, वरदान, निश्चय बुद्धि वाले कभी ऐसे वैसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, या ऐसा क्यों ये वैसा क्यों, उन्हें निश्चय रहेगा, निश्चय बुद्धि वाली की रेखा इतनी स्पष्ट होगी कि दूसरों को भी दिखाई देगी, वो ये रेखा अखंडित खंडित नहीं होगी, कभी सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे, याद और खुशी के झूला झूले में झूलते रहेंगे, जन्मते ही
कल्प के अधिकारी हूँ,
जन्मते ही
सेवा की
जिम्मेवारी ले लेंगे, ये निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी, ऐसे वैसे इसमें कभी नहीं जाएंगे। तो सदा नव जीवन के उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप सब आधार मूर्त हो, सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त, और उसमें से भी विशेष मधुबन निवासी तो सारे विश्व के लिए आधार मूर्त है। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है, आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है, हमारी पवित्र दृष्टि से, हमारी शुद्ध दृष्टि से, आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, क्या भाषा है, साहित्य रस, भाषा विलास, क्या कह रहे बाबा कि आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है, आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्मा और प्रकृति दोनों पवित्र बन रहे हैं, आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, आपके श्रेष्ठ कर्मों से क्या हो रहा है, श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है, तो कितनी जिम्मेवारी है, विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो, क्या करते हो, जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी डबल लाइट अनुभव होता है, भारी नहीं लगेगा, इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हो। तो नए वर्ष में क्या करेंगे, अव्यक्त वर्ष भी मनाया, अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए, कि अभी बनना है, फरिश्ता क्या करते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम सब कौन आत्माएं हैं, कौन सी आत्मा है, आधार मूर्त आत्मा है, जितनी हमारी पवित्रता होगी उतने ही आत्माओं के मन में पवित्रता के संकल्प आएंगे, हमारी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र होना है, तो हमारी प्यूरिटी की जो लेवल है वो हर दिन बढ़ती रहे, हमारा प्यूरिटी का जो ग्राफ है वो हर दिन बढ़ता रहे, हमारी जो देह की आकर्षण है, इस देह को देखने की जो वृत्ति है, इस देह को सवारने की, ये बाबा ने आज के मुझे में कहा अच्छी अच्छी तमन्ना है, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनू, ये पहनू वो पहनू, ये सब अच्छी अच्छी तमन्ना है। रानी बहन ने अपने अनुभव में कभी लिखा है कि जिस दिन ज्ञान मिला मम्मा से, तो मम्मा जब वो कितने साल की थी, 8 साल की थी छोटी बच्ची, तो उसने कहा कि हमारे स्कूल में या और थोड़ी बड़ी हो गई थी तब इससे ज्ञान में आ गए कि लोग कहते हैं कि भाई जब आप फंक्शन में जाते हो तब तो कलर पहनना चाहिए आपने, जब यहाँ जाते हो सत्संग में जब जाते हो तब सफेद पहनो, वहां जाते हो तो कलर पहनो, दोनों का ऐसा बैलेंस रखो। तो उसने मम्मा से पूछा क्या करूं, मम्मा ने कहा तुम्हारा जीवन नया है, जो एक बार तुमने पहन लिया बस पहन लिया, अभी उस कलर की दुनिया और इस रंगीन दुनिया में तुमको जाना है, पवित्रता धारण कर ली और उसको कर ली, नो गोइंग बैक। तो हमारी प्यूरिटी जो है वो हमारे चेहरे से, हमारे वस्त्रों से, हमारी सादगी से, हर तरफ से वो झलकनी चाहिए, कोई संकल्प नहीं, जैसे हमें कोई संकल्प नहीं बाहर का जाके खाए, उसी तरह अपवित्रता की जो सारी बातें, कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा, एकदम हटा देना चाहिए। कल की मुरली का बहुत जबरदस्त महावाक्य है, वो कहते हैं ना कि कोई कोई कहते हैं हमारी कुदृष्टि जाती है, संकल्प आते हैं, बाबा ने कहा खबरदार, और कहा एकदम हटा देना चाहिए ऐसा कोई भी संकल्प। तो हमारे संकल्पों में भी प्यूरिटी हो, हमारे बोल में भी प्यूरिटी हो, हमारे जो बोल है उसमें पवित्रता के वाइब्रेशंस हो, संकल्प इतने शुद्ध हो कि उसमें अशुद्धि संपूर्ण विलीन हो जाए, वहां से रहे ही ना, इस देह सारी अशुद्धि जो है वो देह से आती है, देह को, देह का आकर्षण ही इसका कारण है, इंद्रियों का आकर्षण। तो सारा काम हमको किस पर करना है, पवित्रता पर। इस यज्ञ का आधार क्या है, पवित्रता, सब कुछ पवित्रता है, यहां जो भी झगड़े हुए किस लिए हुए, पवित्रता, उसी की वजह से। तो अगर ब्रह्मा को कुछ जो कुछ सहन करना पड़ा किस लिए सहन करना पड़ा, इसके लिए, जितना दादियों को सहन करना पड़ा किस लिए सहन करना पड़ा, बस ये एक ही बात के लिए, कितनों ने बाबा से कहा कि आप अपने इस इंस्टीट्यूशन से पवित्रता को हटा दो तो यहां आपकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो बाबा ने क्या कहा, मुझे शेर और शेरनियां चाहिए जो धाड़ लगाने वाले, बकरियां नहीं चाहिए, कम रहेंगे तो चलेगा पर ज्यादा नहीं चाहिए। तो जब पवित्रता ही सब कुछ है, यहां पर नवीनता ही पवित्रता की है, जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया वो नवीनता ही पवित्रता की है, तो अपवित्रता का ऐसे त्याग कर दो कि जैसे क्या है वो, जैसे वो जहर है, जैसे कि हम कुछ थूक देते हैं उसको वापस खाने जाता है, झूठन जे देह जो है ना उसको झूठन कहा जाता है, वो भी कैसे, कितने जन्मों का है, झूठन के झूठन का झूठन, कोई झूठा भोजन नहीं करता है, तो ये देह क्या है, वो झूठ का झूठ का झूठ, कितने लोगों ने छोड़ा है, वो लास्ट का जो है ना 3-4 लोगों ने खाया है थोड़ा थोड़ा, और फिर जो खोला है अभी खाने हमको कह रहे इसको खाओ, तो ये देह भी वैसा ही है, इस देह से उपरा। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास और संपूर्ण पवित्रता की धारणा। अच्छा, ओम शांति।